धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयदियानं नमो वज्जायानं
नमो लोए
सौभसाहूनं
निच्छविय अर्थकम्मं केवलनानेन दिर्थ परमर्थं नमियूनरिष्ठनेमिं पोच्छामी निबंधन योगम। इसकी आवाज आ रही है, वो तो बंद रखिए। हाँ, अभी हमारा प्रक्रम अनुयोग द्वार चलेगा। पेज नंबर है? हाँ है, पेज नंबर 15 पर। अभी नहीं, वो आवाज जो वो गई। हाँ देखो, यहाँ कहते अभी हम आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा या हमारा वर्गणा खंड चल रहा था, परंतु पहले जो कुछ शेष अनुयोग द्वार रहे थे, उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। ये शेष 18 अनुयोग द्वारों की यहाँ 15वीं और 16वीं पुस्तक में चर्चा चलेगी। हमारा निबंधन अनुयोग द्वार हुआ है, अभी प्रक्रम अनुयोग द्वार पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 15, 15वीं पुस्तक के 15वीं पृष्ठ पर आए हैं। ये प्रक्रम अनुयोग द्वार का मंगलाचरण है, उसको भी अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। जय भुवन कतिल हो तिहुवन कलि कलु सधुवन वावारो संतियरो संति जिनो पक्कम अनुयोग कर्तारो। उसका नीचे अर्थ देखते हैं। लोक के एकमात्र तिलक स्वरूप भुवन एक तिलो, बाद में कहेंगे जयवंत हो गए, जयऊ वो बाद में बताएंगे। फिर तिहुवन कलि कलुस धुवन वावारो, तीन लोक के शत्रुभूत पाप मैल के धोने में व्यापृत, और कैसे शांति के करने वाले संति यरो, संति यानी शांति करने वाले, और प्रक्रम अनुयोग के कर्ता संति जिनो, नहीं प्रक्रम अनुयोग कर्तारो, ऐसे शांतिनाथ जिनेन्द्र, संति जिनो यानी शांतिनाथ जिनेन्द्र, और संति यरो का अर्थ थे शांति करने वाले, ऐसे जो शांतिनाथ जिनेन्द्र है वो जयवंत होवे, उनकी जय बोल के अभी यहाँ आठवां अनुयोग द्वार जो प्रक्रम अनुयोग द्वार है उसकी यहाँ चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, प्रक्रम का भी निकालो विषय परिच, क्योंकि निबंधन तो देख लिया हम, ये हमने प्रक्रम देखते हैं विषय परिचय के पेज नंबर 4 पर, विषय परिचय का पेज 4 हमने उसमें से ये निबंधन पढ़ा था। आठवां जो प्रक्रम है देखो उसको पढ़ते, यह यहाँ निक्षेप योजना करते हुए, पहले में पहले प्रक्रम के 6 भेद हमेशा जैसे बताएंगे, नाम स्थापना वगैरह वगैरह, प्रक्रम के ये 6 भेद निर्दिष्ट किए गए हैं। बाद में पूछेंगे प्रक्रम क्या है, नाम प्रक्रम, स्थापना प्रक्रम, द्रव्य प्रक्रम, क्षेत्र प्रक्रम, काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम, इनके कुछ और उत्तर भेदों का उल्लेख करते हुए यहाँ कर्म प्रक्रम का अधिकार, कर्म प्रक्रम को अधिकार प्राप्त बतलाया है, यानी उसकी यहाँ चर्चा है कर्म प्रक्रम की। अब प्रक्रम किसे कहना वो बता रहे, प्रक्रामति इति प्रक्रमः, इस निरुक्ति के अनुसार प्रक्रम से कार्मण पुद्गल प्रचय का अभिप्राय बताया। प्रचय कहो संचय कहो एक ही बात है, यानी कार्मण टाइप के जो पुद्गल उनका संचय है प्रचय है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। यहाँ यह शंका उठाई गई है कि जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी के पिंड से अनेक घटादिकों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह संसारी प्राणी एक प्रकार के कर्म को बांधकर फिर उससे आठ प्रकार के कर्मों को उत्पन्न करता है, ये शंकाकार की शंका है। क्योंकि अन्यथा अकर्म पर्याय से कर्म पर्याय का उत्पन्न होना संभव नहीं है। जो कर्म रूप नहीं है उसको अकर्म कहेंगे। कर्मण वर्गणा कुछ कर्म रूप नहीं है, वो अकर्म रूप थी। तो कहते कि इसलिए कहते हैं कि कर्म को ही बांधकर फिर आठ प्रकार के कर्म होते हैं। हम विषय परिचय का चार नंबर का पेज देख रहे हैं, प्रक्रम अधिकार के संबंध में यहाँ चर्चा चल रही है। इसके उत्तर में कहा गया है कि जब अकर्म से कर्म की उत्पत्ति संभव नहीं है, तब जिस एक कर्म से आठ प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, वह एक भी कर्म कैसे उत्पन्न हो सकेगा, यह आचार्य उसको कहते हैं। शंकाकार की शंका क्या थी? पहले एक प्रकार के कर्म से आठ प्रकार के बने, परंतु वो भी जो कर्म एक बना वो भी अकर्म से बना के कर्म से बना, कर्मण वर्गणा से बना ना। हाँ, यही आचार्य कहते हैं कि अगर तू आठ को अलग अलग वर्गणा मत मान, पर एक कर्म भी तो अकर्म से उत्पन्न हुआ होगा। यह पूरी शंका ही वो बता देने उत्तर, इसके उत्तर में कहा गया है। यदि उसे भी कर्म से उत्पन्न माना जाएगा तो ऐसी अवस्था में अवस्था जनित अव्यवस्था दुर्निवार होगी, यानी वो एक कर्म भी कर्म से हुआ फिर वो भी कर्म से हुआ, वो इसको अनवस्था दोष कहते। जैसे हम निमित्त से हुआ कहेंगे तो उसके लिए निमित्त, उसके लिए निमित्त, उसके लिए निमित्त, तो जो कर्म रूप नहीं था वो कर्म रूप हुआ है, ऐसा ही मानना ही पड़ेगा। नहीं तो कर्म से ही कर्म उत्पन्न होता है कहेंगे, तो वो कर्म किससे हुआ, वो कर्म किससे हुआ, वो कर्म किससे हुआ, इसे कितने ही पीछे पीछे चले जाओ उसका कोई उत्तर ही मिलेगा नहीं। इसलिए उसे अकर्म से ही उत्पन्न मानना पड़ेगा। ख्याल में आई बात? ये शंकाकार की शंका का आचार्य ने उत्तर दिया। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, दूसरे कार्य नहीं, दूसरे कार्य सर्वथा कारण के ही अनुरूप होना चाहिए, ऐसा एकांत नियम नहीं बनता। अन्यथा मृत्तिका पिंड से यानी माटी का जो गोला है पिंड से घट घटी आदि उत्पन्न न होकर मृत्तिका पिंड के ही उत्पन्न होने का प्रसंग अनिवार्य होगा। क्या कहते हैं? कर्म से ही कर्म होता है ऐसा मानेंगे तो मृत्तिका पिंड से मृत्तिका पिंड ही होगा, घट वगैरह जो अन्य जो पात्र बनते हैं वो नहीं बनेंगे। परंतु चूंकि ऐसा होता नहीं है, अतएव कार्य कथनचित यानी द्रव्य की अपेक्षा कारण के अनुरूप और कथनचित पर्याय की अपेक्षा उससे भिन्न ही उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। यानी द्रव्य वही का वही रहता है परंतु पर्याय अलग अलग होती है, ये स्वीकार होना चाहिए।
कार्य के अनुरूप ही कारण होता है, ऐसा नियम नहीं है।
कार्य के अनुरूप नहीं, कारण के अनुरूप
कार्य सर्वथा कारण के ही अनुरूप होना चाहिए,
कारण जैसा ही कार्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जैसे मृत्तिका का पिंड होता है ना माटी का, और उससे कार्य क्या हुआ, घट बना। नहीं तो मृत्तिका पिंड से मृत्तिका पिंड ही बनता। ये कथनचित यानी पर्याय की अपेक्षा उसमें भेद होता है। अभी उसमें बाद का भी पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं क्योंकि अन्य मतियों का वहां निराकरण किया है। यानी वो तो बात अभी जब हम पढ़ते हैं वहीं से पढ़ेंगे। अभी यहां से केवल इतना पढ़ना है, पांच पेज पर ये उपक्रम लिखा है ना, उसके ऊपर के चार लाइन पढ़ेंगे। प्रकृति प्रक्रम, स्थिति प्रक्रम और अनुभाग प्रक्रम के भेद से प्रक्रम तीन प्रकार का बतलाया गया है। इनमें प्रकृति प्रक्रम को भी मूल प्रकृति प्रक्रम और उत्तर प्रकृति प्रक्रम इन दो भेदों में विभक्त कर यथा क्रम से उनके अल्पभूतत्व की यहाँ प्ररूपना की गई है, क्योंकि प्रक्रम में उसमें कारमण पुद्गल प्रचय को लिया है और वो प्रकृति में स्थिति में और अनुभाग की अपेक्षा उसकी बात बताएंगे अंत में। स्थिति प्रक्रम और अनुभाग प्रक्रम की भी संक्षेप में प्ररूपना करके इस अनियोग द्वार को समाप्त किया है। ये सब चर्चा भी हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं पेज नंबर 15 पर। अभी हमने मंगलाचरण तो देखा था, उसका अर्थ भी देखा था। प्रक्रम यानी प्रचय, उसका कारमण का प्रचय संचय। देखो अभी वो निक्षेप लगाएंगे पहले में, पहले इकट्ठा कितना उसका समूह कितना हुआ, उसके नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं, उसको प्रचय संचय प्रक्रम अलग अलग नाम है ना उसके। देखो अभी हम कहते हैं यहाँ पर 15 पेज पर बीच वाला पैराग्राफ बड़ा, प्रक्रम इस संयोग द्वार के स्तोक अर्थों की प्ररूपना करते समय अप्रकृत अर्थ के निराकरण द्वारा, यानी जो हम उसमें से अर्थ चाहते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अलग अलग निक्षेप लगाएंगे तो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो अन्य को हमको रूल आउट करना है और केवल जो हम चाहते हैं उसी की बात यहाँ बताएंगे। इसलिए कहते हैं अप्रकृत अर्थ, यानी जो हम हमें इष्ट नहीं है वो अप्रकृत है, प्रकृत यानी जो हम चाहते हैं जो इष्ट है, उसके निराकरण द्वारा प्रकृत अर्थ की प्ररूपणा करने के लिए निक्षेप किया जाता है। निक्षेप क्यों किया जाता है, हर बार हमने वो बात देखी थी कि हमें इसमें से कौन सा निक्षेप अभिप्रेत है, इष्ट है, किसकी विवक्षा से ये बात चलेगी, उसके लिए पहले सारे निक्षेपों की चर्चा करेंगे। वही इस प्रकार है, नाम प्रक्रम, स्थापना प्रक्रम, द्रव्य प्रक्रम, क्षेत्र प्रक्रम, काल प्रक्रम और भाव प्रक्रम। इस प्रकार प्रक्रम 6 प्रकार का है। इनमें नाम प्रक्रम और स्थापना प्रक्रम अवगत है, हमेशा वो नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप किसको कहेंगे वो हमें पता है। द्रव्य प्रक्रम, आगम द्रव्य प्रक्रम और नो आगम द्रव्य प्रक्रम के भेद से 2 प्रकार का है। अभी उसमें से आगम प्रक्रम किसको कहेंगे, द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप, तो उस संबंधी प्रावृत को जानने वाला जिसमें उपयोग से रहित, यही बता रहे। उनमें प्रक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक, ज्ञायक यानी जीव, जानने वाला जीव, उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य प्रक्रम है। उपयोग रहित यानी जीव कभी उपयोग रहित हो जाता है क्या, उसमें उपयोग नहीं है। नो आगम द्रव्य प्रक्रम, हमेशा जैसे उसके 3 भेद होते, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, तो नो आगम यानी जो नहीं जानने वाला क्या है, वो जीव का शरीर नहीं जानने वाला है, वो जीव अभी नहीं जानने वाला है, भविष्य में जानेगा, और इनके अलावा अन्य भी चीजें, इस तरह से 3 भेद होते हैं। तो नो आगम द्रव्य प्रक्रम, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त यानी उनके उनको छोड़कर अन्य भेद से 3 प्रकार का है। इनमें से ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य प्रक्रम अवगत है, अवगत है ना जानने वाले जीव के शरीर को, वो भले भूतकाल का हो, अभी का हो या भविष्य का हो, उसको ज्ञायक शरीर कहेंगे। भावी यानी जीव को कहेंगे जो भविष्य में जानने वाला है। अवगत है ना आपको, इस नोन वेल नोन है, अवगत है ना पता है, ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है। तद व्यतिरिक्त, अभी तद व्यतिरिक्त में कर्म नौकर्म 2 भेद करेंगे। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य प्रक्रम, कर्म प्रक्रम और नोक्रम नो कर्म प्रक्रम के भेद से 2 प्रकार का है, यानी जो कर्म है वो और जो कर्म नहीं है वो अन्य है। उनमें कर्म प्रक्रम 8 प्रकार का है, वो तो 8 प्रकार के जो कर्म है उसको कर्म प्रक्रम, और नो कर्म प्रक्रम जो कर्म नहीं है वो क्या क्या है, तो कहते वो सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। यानी यहाँ केवल समूह को लेना है ना प्रक्रम को, अश्वों और हाथियों का प्रक्रम सचित्त प्रक्रम है, जो हम कहेंगे हाथी का झुंड, उसको क्या कहेंगे? सचित्त प्रकरण। कोई भी ले लो ना, गाय ले, हाथी ले लो, कुछ भी, अनेक जीवों का वो समूह ले। हिरण्य और सुवर्ण आदिकों का प्रक्रम अचित्त प्रक्रम है। आपके पास है ना प्रक्रम, अचित्त प्रक्रम बहुत है ना, तिजोरी में रखा है। तथा आभरण सहित हाथियों व अश्वों का प्रक्रम मिश्र प्रक्रम कहलाता है। शादी में गए तो गहनों सहित महिलाएं, वो मिश्र प्रक्रम हो जाएगा। इसलिए हाथी घोड़ों का उसको भी, उनको भी तो उनके गहने पहनाते थे ना, आभूषण आभरण, बहुत बहुत आभरण होते थे उसके। हाँ, मैसूर में वगैरह होते थे, या मंदिरों के जो होते हैं। अभी हमारे पंच कल्याणों को में नहीं करते, उसको कितना सजाते हैं ना। हाँ, ऊपर वो तो कपड़े का क्या क्या बनाते हैं आभरण। और वो उसके ऊपर वो जो कपड़े का भी बना के डालते हैं ना, जरी के कपड़े का कुछ। अब क्षेत्र प्रक्रम, ये आभरण, वस्त्र और वस्त्राभरण यानी भूषण, आभूषण, अलंकार। क्षेत्र प्रक्रम, वो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ऐसे है ना, तो उसमें से क्षेत्र प्रक्रम, ऊर्ध्वलोक प्रक्रम, अधोलोक प्रक्रम, तिर्यक लोक प्रक्रम के भेद से तीन प्रकार का है। यहाँ आधेय में आधार का उपचार करने से, कि कहाँ रहते, ऊर्ध्वलोक में रहते, वह आधेय हुआ। आधेय किसको कहेंगे? जिसके आधार से रहते वह आधेय। नहीं नहीं, आधार तो जिसके आधार से रहते वो तो आधार, और उसमें रहने वाले वो आधेय। हाँ, ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जो जीव है वो क्या हुए? आधेय हो गए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ आधेय में आधार का उपचार करने से उन लोकों में स्थित जीवों की ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक संज्ञा है, क्योंकि इसके बिना स्थिरशील तीन लोकों का प्रक्रम बन नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं? ये तीन लोक कैसे वो स्थिर है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उनका क्या समूह बताएंगे? पर ऊर्ध्वलोक किसको कहा? ऊर्ध्वलोक में रहने वाले जीवों को ऊर्ध्वलोक कहा, और उनका जो प्रक्रम है उसको ऊर्ध्वलोक प्रक्रम कहेंगे। ये अपेक्षा है इनके। समय, अभी काल प्रक्रम को बताएंगे। समय, आवली, क्षण, लव और मुहूर्त आदि को काल प्रक्रम कहा जाता है। भाव प्रक्रम दो प्रकार का है, जिसे हमने द्रव्य में दो प्रकार बताए थे, यहाँ भाव में भी दो, आगम भाव प्रक्रम और नो आगम भाव प्रक्रम। उनमें प्रक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक उपयोग युक्त जीव आगम भाव प्रक्रम है, उसी में उसका उपयोग है उस समय। औदयिक आदि पांच भावों को नो आगम भाव प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ कर्म प्रक्रम प्रकृत है। ये कर्म प्रक्रम कौन सा भेद है, कौन से निक्षेप का भेद है? हाँ, तद्व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य प्रक्रम। तद्व्यतिरिक्त का भेद था ना, और वो तद्व्यतिरिक्त वो नौ आगम का भेद था, और नौ आगम वो कर्म का भेद था। यानी इसको कहेंगे तद्व्यतिरिक्त, यानी कर्म तद्व्यतिरिक्त नौ आगम, हाँ, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य प्रक्रम। यानी इसको कहेंगे कर्म तद्व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य प्रक्रम। ये उसका पूरा नाम, ये नाम, पिताजी का नाम, सरनेम सब बताना है ना ऐसा। प्रक्रामति इति प्रक्रमः, इस निरुक्ति के अनुसार कार्मण पुद्गल प्रचय को प्रक्रम कहा गया। प्रचय ने उसका समूह संचय। फिर शंका, यहां शंकाकार कहता है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के एक पिंड से अनेक घटादिकों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर त्रस अथवा जो कोई भी जीव एक प्रकार के कर्म को बांधकर उसे आठ भेद रूप करता है, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है। उनको कहने पहले एक कर्म से आठ कर्म होते हैं, जो कर्म रूप नहीं उससे कर्म कैसे होगा, ये उनका प्रश्न है, जो अभी हमने विषय परिचय में भी देखा था, वही बात है। समाधान, इस शंका का निग्रह करते, यानी वो शंका ठीक नहीं है, अभी उसका निराकरण करेंगे। यदि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर तुम्हारे द्वारा संकल्पित, क्या कहा, शिष्य ने कल्पना की कि एक कर्म से आठ कर्म हुए, तो उन्होंने जो सोचा है, संकल्पना की है एक कर्म की, तो तुम्हारे द्वारा संकल्पित एक कर्म की उत्पत्ति भी अकर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मत्व के प्रति कोई विशेषता नहीं है। आठ कर्म कहो या एक कर्म कहो, आप कहेंगे आठ कर्म कर्म से होते हैं तो एक कर्म भी कर्म से होना चाहिए, तो वो एक कर्म और कौन से कर्म से होगा, ऐसे चले जाओ लंबी लाइन। यदि कहा जाए कार्मण वर्गना से जो एक उत्पन्न हुआ है वह यदि कर्म नहीं है तो फिर उससे आठ कर्मों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है। यानी अगर कहते कि कार्मण वर्गना से एक कर्म हुआ, तो कार्मण वर्गना से हुआ ना, कर्म से तो नहीं हुआ, अगर उसको भी नहीं मानेंगे तो आठ कर्मों की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। शंकाकार की भाषा में उसको बता रहे हैं, क्योंकि अकर्म से कर्म की उत्पत्ति का विरोध है, क्योंकि शंकाकार का कहना है कि अकर्म से कर्म नहीं हो सकता, इसलिए कार्मण वर्गना से मान ले एक कर्म हुआ, हाँ, तो आठ कर्म कैसे होंगे, यानी वो आठ कार्मण वर्गना से जो बना है उसको अगर कर्म नहीं मानेंगे तो कर्म ही नहीं है, तो आठ कर्म कहां से हो गए, ये कहना चाहते। दूसरे, कारणानुसार ही कार्य होना चाहिए, ऐसा एकांत नियम भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी के पिंड से, मिट्टी के पिंड को छोड़कर घट घटी शराब अलिंजर और उष्ट्रिका आदिक पर्याय विशेषों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग अनिवार्य होगा। यानी मिट्टी के पिंड से अनेक अलग अलग आकार के पात्र वगैरह बनते हैं, हम कहते हैं मिट्टी से क्या बनता है, वो तो कमंडल बनेगा, घड़ बनेगा, छोटी छोटी चीजें बनेगी, जिसको वो तो शराब कहते हैं ना, यहाँ शराब लिखा है, वो शराब जो होता है चाय पीने के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, कपड़ा का भी वो अलग नहीं, वो तो बिहार में वो यही मिट्टी का ही सकुरा नहीं, हाँ हाँ, तो जो पिया और फेंक दिया इस तरह से, हाँ उसको कहते। अरे अलग अलग उसके जो मिट्टी के जो कुछ बातें बना सकते, मिट्टी का कुछ भी बनते हैं, हाँ तवा भी बनाते हैं मिट्टी का, मिट्टी के अन्य भी कुछ चीजें बना सकते हैं, वो हमारे जिसको कहें कुंडी क्या कहते हैं उसको, झाड़ के लिए कुंडा, कुंडा 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 कहते हैं। अच्छा गमला कहते हैं हिंदी में शायद, गमला कहते हैं ना, हाँ यानी अलग अलग पॉट्स उसमें से होते हैं, बस इतनी बात है, अभी आगे बढ़ते देखो। यानी वो पर्याय द्रव्य, हमने मिट्टी को द्रव्य कहा, पर ये उसमें अनेक पर्याय होती है। अभी सोने का उदाहरण है, सोना है तो उसमें से बंगड़ी भी होती है, हार भी होता है, कुंडल भी होता है, कुछ भी अन्य अन्य अलंकार। तो अगर हम एक से अगर अनेकों की उत्पत्ति नहीं, सर्वथा वैसा ही कार्य होना मानेंगे तो सोने से केवल सोना ही बना, सोने से अन्य अन्य पर्याय अन्य अन्य डिजाइन नहीं बन सकते हैं, ऐसा प्रसंग आएगा। यदि कहो, ये आगे लिखा है सुवर्ण नहीं, ये हो गया ना, यदि कहो कि सुवर्ण से सुवर्ण के घट की उत्पत्ति देखी जाने से कार्य कारणानुसार ही होता है, सो ऐसा कहना भी योग्य नहीं है। यानी आप कहेंगे कि सुवर्ण से तो सुवर्ण का घट बनेगा, सुवर्ण की बंगड़ी बनेगी, सुवर्ण का हार बनेगा, तो कहते कठोर सुवर्ण से अग्नि आदि का संयोग होने पर सुवर्ण जल की उत्पत्ति देखी जाती है। क्या कहा, कारण के कारण के अनुसार ही कार्य होता है अगर मानना है तो, पहले वो कड़क जो सोना जो है कठिन था तो उसको तो वो अग्नि के ऊपर तपता है मान करते हैं, तो वो रस हो जाता है उसका, सुवर्ण जल कहा उसको। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कारण उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा। क्या कहा, कारण उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होने वाले को तो कार्य कहते हैं, क्योंकि कार्य सर्वात्मना कारण रूप ही रहेगा, इसलिए उसकी उत्पत्ति का विरोध है। क्या कहते हैं, कारण जुदा है और कार्य जुदा है, उत्पन्न होने वाले जो कुछ बात हुई उसको तो हम कार्य नाम देते, पर्याय नाम देते, पर कारण है वो उत्पन्न नहीं होता है, कारण तो है और कार्य वो उत्पन्न हुआ है। अब कहते हैं कि अगर कार्य को सर्वात्मक कारण जैसा ही मानेंगे, कारण रूप ही मानेंगे, तो कार्य भी कारण ही हुआ, तो उसका उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कारण की उत्पत्ति नहीं होगी, और हमने कार्य कारण सर्वात्मक कार्य कारण रूप ही मान लिया तो उसकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। यानी ये न्याय की भाषा में उसका निराकरण उन्होंने किया है। अब शंका, यदि सर्वथा कारण का अनुसरण करने वाला ही कार्य नहीं होता है तो फिर मूर्त पुद्गल द्रव्य से अमूर्त आकाश की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। क्या कहते, कारण के अनुसार कार्य नहीं बनाते हो, मानते हो तो जो मूर्त पुद्गल द्रव्य से अमूर्तिक आकाश द्रव्य हो जाना चाहिए। इसी प्रकार अचेतन पुद्गल द्रव्य से सचेतन जीव द्रव्य की भी उत्पत्ति पाई जानी चाहिए। दलील क्या कह रहे, समझ में आई ना बात, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता, इसीलिए कार्य कारणानुसारी ही होना चाहिए, ये उसकी दलील है। समाधान, यहां उपर्युक्त शंका का परिहार कहते हैं, किसी विशेष स्वरूप से कार्य कारणानुसारी भले ही हो परंतु वह सर्वात्म स्वरूप से वैसा संभव नहीं है। क्या कहते हैं, किसी अपेक्षा से वो कारण के समान है परंतु सर्वात्मक पूरा का पूरा वो कारण ही कार्य वो कारण ही हो जावे, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पाद व्यय वो द्रव्य लक्षण वाले जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल और आकाश द्रव्य अपने विशेष गुणों के अविनाभावी समस्त गुणों का परित्याग न करके अन्य पर्याय को प्राप्त होते हुए दिखाई जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, यानी जो जीव है अपने गुणों का जो समूह उसका अपना अपना, वो गुण तो कभी पलटते नहीं है, तो वे गुण कायम रह कर ही यानी गुणों का परित्याग नहीं करते, गुण को नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान दर्शन वगैरह सब रहेंगे पर उसका अन्य अन्य पर्याय रूप से परिणमन हो सकता है। दूसरी बात, कर्म कार्मण वर्गणा से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। क्या कहा, कर्म है वो कार्य है और कार्मण वर्गणा उसका कारण है, उससे सर्वथा जुदा नहीं है, तो क्या समानता है, सर्वात्मक भी नहीं है पर थोड़ा डिफरेंस भी है, और समानता क्या है उनमें, अचेतनत्व मूर्तत्व और पौद्गलिकत्व स्वरूप से कारमाण वर्गणा के साथ समानता पाई जाती है, क्योंकि द्रव्य वही का वही है, उसकी पर्याय जुदी है, पर्यायांतर हो गया है, क्योंकि कारमाण वर्गणा भी अचेतन है वो भी मूर्तिक है, पुद्गल की है, और कर्म भी वैसा ही है, ये तो समानता है दोनों में। इसी प्रकार वे उससे सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि यानी क्या कहे, सर्वथा भिन्न भी नहीं है क्योंकि कुछ विशेषता समानता पाई जाती है। अब कहते सर्वथा अभिन्न भी नहीं, पूरे पूरे एकमेक ही है ऐसा भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंस भी है, तो क्या है? ज्ञानावरणादि रूप प्रकृति भेद। क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता तो कोई ज्ञानावरण हुआ, कोई दर्शनावरण, कोई मोहिनी, ऐसा प्रकृति भेद तो है ही है उनमें। स्थिति भेद भी है, अलग स्थितियां बनती है अलग अलग, और अनुभाग भेद से तथा जीव प्रदेशों के साथ परस्पर अनुगत स्वरूप से उनमें कार्मण वर्गणा से भेद पाया जाता है। कार्मण वर्गणा तो सर्वत्र फैले पूरे लोक में, और कर्म तो हम जीव के प्रदेशों के साथ वहां उसका जो कुछ निमित्त बना बनता है वहां कथनचित उसको भेद यानी उसके बंध हुआ है। जीव प्रदेशों में अनुगत यानी वहां उन प्रदेशों में वो अविस्थित है, इस अपेक्षा से कार्मण वर्गणा में और कर्म में भेद है। उनमें क्या अभेदता नहीं समानता है वो भी बताई, और क्या डिफरेंस है वो भी बताया। इसलिए कार्य कथनचित कारणानुसारी है और कथनचित वह तदनुसारी नहीं भी है, यह सिद्ध है।
जो लगाते हैं कारण का और कार्य, जो हम लोग जो समझते हैं वो हमेशा उसके अनुसार ही कार्य होगा, ऐसा नियम नहीं बता रहे।
देखो अनुसार ही यानी क्या है, अनुसार यानी वो द्रव्य का द्रव्य ही रहता है तो उसको कार्य भी नहीं कहेंगे। कथनचित भेद का अर्थ है द्रव्य तो वही का वही है, पर पर्याय जुदी है। एक ही द्रव्य से जुदी जुदी पर्याय होती है ना, नहीं तो सब कारण के अनुसार तो सब एक जैसे होनी चाहिए, ये कहना चाहते।
नहीं, ऊपर जो बताया ना, पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य अपने विशेष गुणों के अभिनव है भी, समस्त गुणों का परित्याग न करके अन्य पर्याय को प्राप्त होते हुए देखे जाते है, तो उसके लिए कोई कारण नहीं बताया उन्होंने।
क्या क्या
ये जो ऊपर जो ये चौथी लाइन में बताया ना,
कारण वो द्रव्य इटसेल्फ कारण है ना,
उत्पाद व्यय द्रव्य
लक्षण वाले, कौन है द्रव्य? ये छह द्रव्य है,
छह द्रव्य।
तो छह द्रव्य क्या करते हैं? अपने गुणों का परित्याग, वो बीच वाले छोड़ दो, गुणों का परित्याग न करके अन्य पर्याय को प्राप्त होते, अन्य ने एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त होते। हर समय पर्याय हो रही है ना उनकी, तो अभी आप थोड़ा जानते हैं कभी ज्यादा जानते हैं, वो अन्य पर्याय को प्राप्त होते हैं। अपने गुण तो वही के वही रहते हैं और पर्याय बदलती है, यही तो कहते हैं। सर्वथा कारण के अनुसार अगर होना है तो गुण में तो केवल ज्ञान जानने, केवल ज्ञान रूप होने की शक्ति है, परंतु हम आप अभिमति शुद्ध ज्ञान रूप से परिणमित है। कथनचित भेद और कथनचित अभेद दोनों ही बता रहे, कथनचित कारण के अनुसार है और कथनचित जुदा भी है, कारण से उसका जुदाई भी बता रहे हैं। यानी कि ना कथनचित कारणानुसार ही है और कथनचित वह तदनुसार नहीं भी है, ये दोनों ओर से तो एकांत हो जाएगा वो। शंका, चूंकि असत कार्य किया नहीं जा सकता, उपादानों के साथ कार्य का संबंध रहता है, किसी एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं है, समर्थ कारण के द्वारा। अरे एक नंबर ऊपर पढ़ना रह गया, पहले पढ़ लेते हैं फिर ये दोबारा पढ़ेंगे। असदकरणाद् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तताशक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। तब नीचे उसको उद्धृत कर रहे हैं, क्या? असत कार्य किया नहीं जा सकता, असत अकरणात्, उपादानों के साथ कार्य का संबंध रहता है, उपादान घरणात्, किसी एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति संभव नहीं है, सर्वसंभवाभावात् यानी संभव अभावात्, समर्थ कारण के द्वारा शक्य कार्य ही किया जाता है। शक्ततः शक्तस्य शक्ति शक्य करणात् तथा कार्य कारण स्वरूप ही है, उससे भिन्न संभव नहीं है। अतएव इन हेतुओं के द्वारा अनेक उन्होंने हेतु दिए, ये सबसे वो क्या कहना चाहते हैं, कारण व्यापार से पूर्व भी कार्य सत ही है यह सिद्ध है। यानी असत से वो सत की उत्पत्ति नहीं होती, इस बात को ये कहना चाहते हैं।
ऊपर बताया कि कारण के अनुसार कार्य कथनचित होता है कथनचित नहीं होता है, और यहाँ पे इसे बताया कि कारण कार्य कारण स्वरूप भी होता है।
ये अलग अलग दलील बताते हैं, इसलिए अपने ही पहले ही मत पर वो अड़ी है, अभी उसका समाधान वो करेंगे। यानी वो भी किस अपेक्षा से कहा है उसको अपेक्षित कथन नहीं समझकर उसको भी सर्वथा रूप से ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसका कंफ्यूजन चल रहा है, शंका है ये। और शंकाकार ने शास्त्र का ही वचन प्रस्तुत किया है, पर उस शास्त्र का वचन का सही अर्थ क्या है वो बताने, पहले में पहले समाधान पहले पढ़ने के पहले शंकाकार क्या पूछना चाहते उसका विशेषार्थ बताए। देखो विशेषार्थ, सांख्य मत में प्रधान की सिद्धि में उपयोगी होने से सत्कार्यवाद को स्वीकार किया गया है, और कार्य को सत सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त कारिका में निम्न हेतु दिए गए हैं। ये सांख्यों का क्या मत है उसकी बात है, और ये वो सांख्य मत का यहाँ निराकरण करना है। इसलिए शिष्य के मत में सांख्यों की जो मान्यता है वो उसके लिए जो हेतु दिए जाए हैं वो यहाँ डाले हैं। देखो विशेषात, सांख्य मत में प्रधान की सिद्धि में उपयोगी होने से सत कार्यवाद को, यानी सत से ही कार्य होता है, इन्हें एकांत नियम बता रहे हैं, स्वीकार किया गया है। कार्य को सिद्ध करने के लिए, सत सिद्ध करने के लिए, यानी कार्य वो सत से ही वो हुआ है ये सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त कारिका में निम्न हेतु दिए गए। उन्होंने जो अभी उद्धरण दिया है शंकाकार ने, वो जो उसने हेतु अलग अलग बताए उसी को फिर खोलकर बता रहे। एक नंबर, यदि कारण व्यापार के पूर्व में कार्य को सत ही स्वीकार किया जाए तो उसका उत्पन्न होना शक्य नहीं है, जैसे खर विषाण। अतएव कारण व्यापार के पूर्व में भी कार्य को सत ही स्वीकार करना चाहिए। कारण के द्वारा केवल उसकी अभिव्यक्ति की जाती है जो उचित ही है, जैसे तिलों में तेल जब पहले से ही सत है तभी वह कोलू आदि के द्वारा निकाला जा सकता है, वालुका में से तेल का निकाला जाना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है। ये उनके जो अन्य अन्य मत है ना, इसे पढ़ेंगे इधर, हाँ ये बराबर है बराबर ऐसा लगेगा, उसके में क्या दोष आता है वो बताएंगे अभी। रेती वाळू जिसको कहते मराठी में। दूसरा है तो उपादान ग्रहण दिया गया है। उपादान ग्रहण का अर्थ है कारणों से कार्य का संबंध, अर्थात कारण कार्य से संबद्ध हो करके ही उसका उत्पादक हो सकता है, न कि असंबद्ध रहकर। और वह संबद्ध चूंकि असत कार्य के साथ संभव नहीं है, अतएव कारण व्यापार से पूर्व में भी कार्य को सत ही स्वीकार करना चाहिए। यानी कारण के पहले भी कार्य था ये उनकी मान्यता है, कारण व्यापार से पूर्व ये कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यदि कहा जाए कि कारण असंबद्ध ही कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः इसके लिए कार्य को सत मानना आवश्यक नहीं है, सो यह कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि वैसा मानने पर जिस प्रकार मिट्टी के द्वारा अपने से असंबद्ध घट कार्य किया जाता है, उसी प्रकार असंबद्धत्व की समानता होने से घट के समान पट आदि कार्य भी उसके द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही किसी कारण से सब कार्यों के उत्पन्न होने का प्रसंग अनिवार्य होगा, परंतु ऐसा चूंकि संभव नहीं है, अतएव यह स्वीकार करना चाहिए कि संबद्ध कारण संबद्ध कार्य को ही उत्पन्न करता है, न कि असंबद्ध को। इस प्रकार यह तीसरा हेतु देकर सत कार्य सिद्ध किया गया। क्या कहना चाहते हैं कि मिट्टी से जुदी ऐसी घट पर्याय उत्पन्न होती है तो कहते पट भी उत्पन्न होना चाहिए, ये सांख्यों का कहना है। ये सारे दलील उनके हैं। चौथा पॉइंट, यहां शंका की जा सकती है कि असंबद्ध रहकर भी वही कार्य उत्पन्न किया जा सकता है जिसके उत्पन्न करने में कारण समर्थ है। यहाँ समर्थ कारण की बात उन्होंने बताई कि वो उसी कार्य को करने में समर्थ है, ऐसी अगर शंका कहेंगे। इसीलिए सर्वसंभव का प्रसंग देना उचित नहीं है। इसके उत्तर में शक्तस्य शक्य करणात् यह चतुर्थ हेतु दिया गया है। उसका अभिप्राय है कि शक्त कारण शक्य कार्य को ही करता है। शक्त कारण यानी समर्थ कारण। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि कारण में रहने वाली वह कार्योत्पादन रूप शक्ति क्या समस्त कार्य विषयक है या शक्य कार्य विषयक ही है। यदि उस शक्ति उक्त शक्ति समस्त कार्य विषयक स्वीकार की जाती है तो सबसे सभी के उत्पन्न होने का जो प्रसंग दिया गया है वह तदवस्थ ही रहेगा। इसलिए यदि उक्त शक्ति को शक्य कार्य विषयक ही स्वीकार किया जाए तो फिर स्वयं वह सत कार्य सिद्ध हो जाता है। यानी ऐसी शक्ति है कि उससे भी पर्टिकुलर ही कार्य हो जावे, ऐसे उनका कहना है। क्योंकि अविद्यमान शक्य कार्य में तद विषयक शक्ति की संभावना ही नहीं रहती, अतएव कार्य सत ही है। ये ही की बात सर्वथा लगाना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने दिया था, सत कार्य को सिद्ध करने के लिए अंतिम हेतु कारण भाव दिया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि कार्य चूंकि कारणात्मक है, अतएव जब कारण सत है तो उससे अभिन्न कार्य कैसे असत हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः कार्य कारण व्यापार के पूर्व भी सत ही रहता है, यानी कारण के पूर्व भी वो सत ही था, ऐसा उनका सर्वथा कहना है। यह सांख्यों का अभिमत है। आगे वीरसेन स्वामी स्वयं इस अभिप्राय का निराश करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी शंका है उनकी और सांख्य, क्योंकि देखो ये अलग अलग दर्शनों के जो अलग अलग मत है और उसके लिए उनके सब हेतु दृष्टांत सब देते हैं, परंतु न्याय के द्वारा उसका निराकरण करते हैं। ये तो जिनमत जो है, अनेकांत जो है, उसको यहाँ सिद्ध करेंगे। समाधान, इस प्रकार किन्हीं कपिल आदि का कहना है जो योग्य नहीं है। कारण कि हाँ, कपिल भी मत है कहने वाले, जो ये सांख्य मत वगैरह कहने वाले जो है उसके कपिल आदि लिया, यानी उनके जो कुछ कहने वालों में उनके जो नाम हुए होंगे विशिष्ट, उनके ऋषि वगैरह कोई होंगे उनके। कारण कि कार्य को सर्वथा सत मानने पर कर्ता के व्यापार के निष्फल होने का प्रसंग आता है, यानी कार्य है ही, फिर वो करने धरने की बात तो नहीं रही क्योंकि क्या सर्वथा सत माना ना उसने। इसी प्रकार सर्वथा कार्य के सत होने पर उपादान का ग्रहण भी नहीं बनता, सर्वथा सत कार्य की उत्पत्ति का विरोध है। सर्वथा सत माना तो फिर उत्पत्ति का सवाल ही कहाँ होता है, वो तो है ही है। कार्य के सर्वथा सत होने पर कार्य कारण भाव ही घटित नहीं होता। इसके अतिरिक्त असंगत होने से सत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि यदि कार्य कारण व्यापार के पूर्व में भी विद्यमान है तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उत्पत्ति कब कहेंगे? जब नहीं था और जो हुआ तो उसको उत्पत्ति कहेंगे। अब ये कारण के भी पहले विद्यमान थे तो उसकी उत्पत्ति क्यों कह रहे हो? और यदि वह कारण व्यापार से उत्पन्न होता है तो फिर उसका पूर्व में विद्यमान रहना कैसे संगत कहा जाएगा? और भी यानी उसके लिए और भी प्रूफ दे रहे हैं। नित्य पक्ष में कारण और कार्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में निर्विकल्प होने के कारण, निर्विकल्प ने भेद रहित, क्या कहा, नित्य पक्ष लिया ना, उसके कारण प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से रहित अर्थ में, अर्थ यानी वो पदार्थ द्रव्य जिसको हम ध्रुव कहेंगे उसको, क्योंकि ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव किसमें लगते हैं? पर्याय में लगते हैं। प्राग भाव का अर्थ क्या है? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, और प्रध्वंसा भाव वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव, वो पर्याय में लगेंगे। और यहाँ हम नित्य वस्तु की बात कर रहे तो उसमें पर्याय की बात ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं कह रहे, तो उसमें प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का सवाल ही नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? देखो नित्य पक्ष में यदि अगर नित्य पक्ष की बात करें, नित्य की अपेक्षा बात करेंगे, तो उसमें कारण और कार्य बात बनती ही नहीं है, क्योंकि वहां वो निर्विकल्प होने से यानी भेद रहित अभेद होने से प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से रहित अर्थ में कार्य कारण भाव बन नहीं सकता। समझ में आती है बात? हम नित्य पक्ष की अपेक्षा द्रव्य को देख रहे हैं तो उसमें वो पर्याय की बात नहीं उठा सकते हम, तो उसमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव नहीं रहेगा, तो उसमें कार्य और कारण भी नहीं बनेगा। यदि कहा जाए कि आविर्भाव का नाम उत्पाद और तिरोभाव का नाम विनाश है, तो यह भी कहना योग्य नहीं है। आविर्भाव यानी प्रकट होना और तिरोभाव यानी ढक जाना, यानी अंदर था ही बस उसका आविर्भाव हो गया, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक अवस्था में रहने वाले नित्य पदार्थ का अनाधेय अतिशय यानी विशेषता रहित होने से, चूंकि अवस्थांतर में संक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि पदार्थ नित्य माना तो विशेषता रहित माना, उसमें विशेषता उसमें कोई भेद हमने माने नहीं, नित्य बात बताई तो उसमें कोई भेद ही नहीं है, विशेषताएं नहीं है, तो अवस्था अन्य अवस्था होने का सवाल ही नहीं हो सकता। समझ में आती है बात? यदि नित्य पक्ष की अपेक्षा विचार किया जाए तो अवस्थांतर यानी पर्याय दूसरे होना कार्य होना ये बात ही नहीं बन सकती। अतएव उसमें आविर्भाव और तिरोभाव रूप दो अवस्थाओं के रहने का विरोध है। उनका क्या कहना था? वो कार्य तो था परंतु वो प्रकट हुआ और फिर ढक गया, तो कहते कि नित्य वस्तु कह रहे हो तो उसमें ये बातें बन नहीं सकती। अर्थात कूटस्थ नित्य होने से यानी सर्वथा नित्य होने से, कूटस्थ कहा ना, यदि वह तिरोभूत है तो तिरोभूत ही रहेगा, और यदि आविर्भूत है तो सदा आविर्भूत ही रहेगा। नित्य पक्ष अगर कहते हो तो जैसा है वैसा ही कायम रहेगा, उसी को तो नित्य कहते हैं, और ये सर्वथा नित्य मान रहा है। कहा भी है, अभी यहां जो गाथा प्रस्तुत की है, नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रियानोपपद्यते प्रागेव कारकाभाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। नित्य एकांत पक्ष में भी पूर्व अवस्था मृतपिंडादि के परित्याग रूप और उत्तर अवस्था घटादि के ग्रहण रूप विक्रिया घटित नहीं होती, क्योंकि पूर्ण एकांत पक्ष लिया, नित्य का एकांत पक्ष। अतः कार्योत्पत्ति के पूर्व में ही कर्ता आदि कारकों का अभाव रहेगा, और जब कारक ही न रहेंगे तब भला फिर प्रमाण प्रमृति, प्रमृति क्या लिखा है, एक मिनट, प्रागेव कारक अभाव, एक मिनट, तो फिर प्रमाण और उसके फल की संभावना कैसे जाकी आ सकती है। प्रवृत्ति नहीं हो सकता, परमृति ही होना चाहिए। जैसे ज्ञान और प्रमाण के अर्थ में कुछ है, वह प्रमृति क्रिया का अतिशय साधक, वो प्रमाण, जैसे प्रमाण शब्द है ना, उस अर्थ में कुछ है प्रमाण। प्रमिति शब्द तो हमने देखा था, प्रमाण प्रमिति प्रमाता वगैरह, उसी अर्थ में कुछ प्रमृति शब्द होना चाहिए, यानी उसका फल। देखो प्रमाण के बदले वहां ज्ञान लिखो ना, और फल क्या है, अज्ञान निवृत्ति, उसमें लिखो नहीं, समझो केवल, यानी ज्ञान के अर्थ में वो प्रमाण शब्द आता है, प्रमाण ज्ञान जिसको कहेंगे, यानी कारक ही नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं, नित्य एकांत पक्ष लिया है, तो नित्य एकांत पक्ष में प्रमाण कैसे संख्या सिद्ध होगा, प्रमाण कब कहेंगे हम, वो गुण भी है पर्याय भी है सबको, यानी नित्य भी अनित्य भी, उसको प्रमाण कहेंगे हम, और ये सर्वथा नित्य मान रहा है तो प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा। और उसका फल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति। जरा उसमें बोलो,
गाथा पढ़ी ना हमने,
हाँ,
दो एक और दो नंबर, वो अन्यमति की है
ना, ना ना
अपनी है, पर उसका उत्तर उसका अर्थ उन्होंने अलग तरीके से किया है।
वो नित्य एकांत पक्ष को रूल आउट करते हैं,
नहीं जो इसका जो यहाँ पे जो ये समाध, ये समाधान के गाथा हमने नीचे पढ़ी शंका के रूप में,
कौन सी
ये जो गाथा पढ़ी वो शंका के रूप में पढ़ी
है। अभी की नहीं, अभी तो समाधान चल रहा है, एक नंबर की शंकाकार ने भी कारिका बताई थी तो, और उसमें उन्होंने देखो
शंकाकार ने जो शंका उठाई वो अपनी गाथा के अर्थ का अर्थ करके ही गाथा का उद्धरण किया है,
उन्होंने सांख्य मत का वहाँ प्रस्तुत किया है, सांख्य मत प्रस्तुत किया उन्होंने, और वो सर्वथा मान रहा है, सर्वथा सत को मानने वाला है, यानी कारण के पहले भी कार्य विद्यमान था, सर्वथा था, ऐसा मान रहा है। अब ये नित्य पक्ष का यहाँ निराकरण करने के लिए ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की आचार्य ने,
हाँ
वो अन्यमति की अपेक्षा उसका अलग अर्थ निकाला है, ऐसे समझना चाहिए,
वो अन्यमति का उसमें से अर्थ निकाला, सांख्य मत का पोषण कर दिया।
गाथा तो अपनी है,
गाथा कहाँ की है ये नहीं बताया, देखो देखो ये सांख्य कारिका है, लिख लो पेज नंबर 17, यानी सांख्यों का ही एक, ये सांख्यों के मत की कारिका है,
तो ये अपनी।
और ये जो है वो आप्त मीमांसा की है, आम ही लिखा है ना नीचे 19 नंबर, वो न्याय का ग्रंथ है, और वो सांख्यों की कारिका थी, उनका मत पुष्ट करने के लिए। अभी समझ में आई बात? उनका प्रश्न था ये कारिका अपनी है और वो भी अपनी थी क्या, तो कहते वो सांख्य मत की थी और ये जिन मत की है। हाँ उसमें बोलो, उसमें बोलो,
गाथा अपनी है तो उसका मत तो सांख्य मत की अपेक्षा उसने उसका अर्थ निकाला था।
वो सांख्यों की कारिका है, सांख्य कारिका बताया है।
कारिका
बताई थी वो सांख्यों की,
उसके कथन को सपोर्ट करने वाली ऐसी।
हाँ, या अपने ग्रंथों में भी उनका मत पहले प्रस्तुत करके उसको रोल आउट करते हैं। वो सांख्य मत उन्होंने प्रस्तुत किया था पहले।
हाँ, और ये है उनको रूल आउट करने के लिए। हाँ, दूसरा
ये वो कैसे गलत है, नित्य एकांत पक्ष को रूल आउट कर रहे, उसमें क्या दोष है वो बता रहे। अगर नित्य एकांत ही मानेंगे, यानी कार्य को देखो, प्रमाण किसको कहेंगे, नित्य अनित्य दोनों पक्षों को जहाँ सिद्ध स्वीकार करेंगे, या द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों को स्वीकार करेगा, वो प्रमाण पक्ष है। यानी वो प्रमाण घटित ही नहीं होगा, उसका फल भी नहीं घटित होगा। प्रमाण का फल क्या होता है, ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाण, उसका प्रमाण क्या है, फल क्या है, तो अज्ञान की निवृत्ति, ये उसका फल है, वो भी नहीं घटित होगा, ये कहना चाहते हैं। अभी इसी का विशेषार्थ बता रहे, ये समाधान का पूरा विशेषार्थ। सांख्य मत में चेतन पुरुष को कूटस्थ नित्य स्वीकार किया गया, यानी वो सर्वथा नित्य है, ऐसा कहें कूटस्थ नित्य। चेतन पुरुष ने आत्मा, इस मत का निराकरण करने के लिए उक्त कारिका का अवतार हुआ है। ये कारिका नंबर 2 का, उसका अभिप्राय यह है कि पुरुष को सर्वथा नित्य माना जाता है तो वह विकार रहित होने से चेतना रूप क्रिया का कर्ता भी नहीं हो सकता। सर्वथा नित्य है ना, तो कहते कि भले वो विकार मत ले लो उसमें, वो चेतना का भी यानी ज्ञान का भी, ज्ञान की क्रिया भी नहीं होगी वहां पर, क्योंकि सर्वथा नित्य है। क्योंकि उस अवस्था में कारक अथवा ज्ञापक हेतुओं का व्यापार असंभव है। क्या कहा, कारक करने वाले ने वो कुंभकार आदि बताया है। और ज्ञापक यानी प्रमाता है ना, मैंने बोला ना प्रमाण सा प्रमाता, यानी ज्ञाता जानने वाला, यानी ज्ञान का भी कार्य वहां नहीं बन सकता, क्योंकि किसी क्रिया का वो करता नहीं है। अथवा यदि कारक व ज्ञापक हेतुओं का व्यापार स्वीकार किया जाता है तो फिर पूर्व स्वभाव अकारक अथवा अप्रमाता का परित्याग करके उत्तर स्वभाव उत्पत्ति अथवा क्रिया का कर्तृत्व को ग्रहण करने के कारण उसकी कूटस्थता का विघात होता है। क्या कहना चाहते हैं, पहले सर्वथा नित्य माना तो ना वो किसी का कारक हो सकता है ना ज्ञापक हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही क्रियाएं हैं। आप कहेंगे पहले वो अकारक और अप्रमाता था, अब उसने वो कार्य किया, अभी वो कारक और प्रमाता हो गया, यानी उत्पत्ति और क्रिया का कर्तृत्व उसके हो गया, तो आप कहते कि वो कूटस्थ नहीं रहा। आप सर्वथा कूटस्थ मान रहे थे, अब वहां कूटस्थ नहीं रहा, अतएव कूटस्थ नित्यता का पक्ष बनता नहीं है। कूटस्थ नित्यता ने सर्वथा नित्य जो मत है वो पक्ष है, वो उनका जो कहना वो सिद्ध नहीं होता। अब 20 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। हाँ, अभी तीसरे नंबर की, यदि सत् सर्वथा कार्य पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रकृति च नित्यत्वे कांतवाहिनी। देखो, यदि कार्य सर्वथा सत है, वो सर्वथा सत ही मान रहे हैं, वो कथनचित नहीं था और हुआ है ऐसा नहीं मानते। यदि कार्य सर्वथा सत है तो वह पुरुष के समान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्यों? सर्वथा सत वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी? जो है ही उसकी क्या उत्पत्ति है? और परिणाम की कल्पना नित्यत्व रूप एकांत पक्ष की विघातक है। परिणाम, परिणाम यानी पर्याय, परिणमना। तो परिणाम की कल्पना वो नित्य मानने वालों के यहाँ परिणाम घटित ही नहीं हो सकता, वो पक्ष की विघातक है। फिर इसका विशेषार्थ करके समझा रहे, देखो। अभिप्राय यह है कि यदि कार्य को सर्वथा सत ही स्वीकार किया जाता है तो जैसे सांख्य मत में पुरुष की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, वैसे ही पुरुष के समान सर्वथा सत होने से प्रकृति से महान व अहंकार आदि की भी उत्पत्ति का अनिवार्य प्रसंग आता है जो उन्हें अभीष्ट नहीं है। अभी उनके जो मत इतने अटपटे हैं, हाँ, यहाँ 28-29 का विशेषार्थ बताया। महान महान उनका एक तत्व है। देखो ये महान क्या है उसके लिए निकालो, पेज नंबर 28। नीचे का विशेषार्थ देखते केवल। अब ये सब न्याय की भाषा आने वाली है थोड़ी, ये अन्यों का क्योंकि उनकी इतनी अटपटी है, ऐसी कुछ मान्यते हैं। हम तो अपनी ही बात सीख रहे थे तो हमको तो सरल हो जाता है, बहुत सरल सिंपल और लॉजिकली है। अभी उनके इतने अटपटी मान्यता है, उसके लिए उनके प्रूफ दलीलें जो हेतु दिए वो भी अटपटे है सारे। देखो विशेषार्थ है नीचे से तीसरी लाइन, पेज नंबर 28। सांख्यों का अभिमत है कि, यानी उनका मत, सब पदार्थ सत स्वरूप ही है, कोई भी असत यानी अभाव स्वरूप नहीं है, ये उनका कहना है। उनमें जो परावर्तित अवस्थाएं देखी जाती है वे आविर्भाव व तिरोभाव के कारण होती है, यानी जो पर्याय पर्याय होती है, बस वो तो है ही अंदर, और बस वो तो प्रकट हुई और ढक गई, प्रकट हुई और ढक गई, ये उनका कहना है। उनके यहाँ निम्न 25 तत्व स्वीकार किए, यानी ये सब 25 के 25 वो सब उसकी सत्ता होगी। एक है पुरुष, प्रकृति और महान। महान का अर्थ होता है वो बुद्धि, इसलिए वहां महान शब्द आया था ना। फिर अहंकार, इन ज्ञानेन्द्रिय, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, यानी उसके लिए वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद, पायु व उपस्थ, मन, 5 तन्मात्र, तन्मात्र यानी गंध रस रूप स्पर्श व शब्द, और 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंच महाभूत कहते ना वो लोग। इनमें प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है। ये प्रकृति जो है 2 नंबर का जो तत्व है उनका, 25 तत्व है उनके ये सब मिलकर, उसमें से प्रकृति है वो करने वाला है और पुरुष है वो भोगने वाला है। यानी ये सारे ऐसे जो अटपटे सारे उनके जो मान्यताएं हैं, प्रकृति से महान, महान यानी बुद्धि, और महान से यानी बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां वो 5 तन्मात्र, हाँ, तन्मात्र यानी वो तो गंध रस रूप स्पर्श वगैरह, तथा 5 तन्मात्रों से 5 भूतों का आविर्भाव, और इसके विपरीत क्रम से उनका तिरोभाव। जैसे पृथ्वी आदि 5 भूतों का तिरोभाव गंधादि 5 तन्मात्रों में होता है, यानी वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द तो होते ही है, कायम रहते हैं, और उसी में से आविर्भाव तिरोभाव होता है, तो उसमें से 5 महाभूत होते। ये सब उनकी जो कुछ, हाँ कॉम्प्लिकेटेड और सब कंफ्यूजिंग है सब। हमारे जैसे उनके कोई उसके साथ कंपेयर मत करो, उनके अपनी टोटली अलग मान्यताएं हैं। इस प्रकार सांख्य मत में सब कार्य सत ही है, क्योंकि वो शिष्य ने वही प्रश्न पूछा था कार्य सत ही होता है करके। उनके इस एकांत पक्ष को दूषित करते हुए उपर्युक्त कारिका में कहा गया है, और वहां की कारिका है कि सब पदार्थों को सर्वथा सत मानने पर अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये चारों ही अभाव नहीं बन सकेंगे। सर्वथा सत है तो सत ही है, तो अभाव नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। इनमें से महान, महान यानी वो बुद्धि, और अहंकार आदि में प्रकृति का तथा प्रकृति में महदादि का अन्योन्या भाव न रहने से, यानी वो आपस में उनके अभाव भी नहीं होने से, क्योंकि अभाव रूप कोई वस्तु ही नहीं, सब सत ही है, एक दूसरे का भी आपस में अभाव नहीं सिद्ध करेंगे वो। महदादिक, महदादि के वो महान अहंकार वगैरह प्रकृति स्वरूप हो जाएंगे, और प्रकृति है वो महदादि स्वरूप भी हो सकती है, क्योंकि अभाव एक दूसरे में अभाव भी उन्होंने नहीं माना। इस प्रकार अन्योन्या भाव के अभाव में सबके सब स्वरूप हो जाने का प्रसंग अनिवार्य है। एक का दूसरे में अभाव नहीं मानेंगे तो 25 नहीं रहेंगे, सब एक दूसरे रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार प्राग भाव यानी कार्योत्पत्ति के पूर्व में उसका अभाव के न रह सकने से महदादि के अनादिता का तथा प्रध्वंसा भाव यानी विनाश के न रहने से उनके अनंतता का प्रसंग भी दुर्निवार होगा। क्या कहते हैं, कार्य की उत्पत्ति के पहले भी उसकी उत्पत्ति यानी उसका अभाव नहीं था ऐसा मानेंगे, प्राग भाव को नहीं मानेंगे, वो कार्य अनादि से था ऐसा मानना पड़ेगा, और प्रध्वंस भाव नहीं मानेंगे तो अनंत तक रहेगा वो, उसकी दुर्निवार हो जाएगा। साथ ही प्रकृति में भोक्तृत्व का, पुरुष में कर्तृत्व का अत्यंत भाव न रहने पर प्रकृति व पुरुष का कोई निश्चित लक्षण भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि अत्यंत भाव भी नहीं मानते हैं तो सब एक दूसरे रूप हो जाएंगे। अतः निस्वरूपता का प्रसंग भी कैसे टाला जा सकता है, ये सब आने वाली बातें हैं। ये महान शब्द आया था ना, उसके लिए वो वहां से हमने कुछ, यानी उनकी ये ऐसी कंफ्यूजिंग कोई मान्यताएं है, 25 तत्व बताए है ये वो सब सब। हाँ अभी हम यहाँ का पुरुषार्थ पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ का विशेषार्थ पढ़ते 20 पेज पर, फिर से पहली लाइन से। अभिप्राय यह है कि यदि कार्य को सर्वथा सत ही स्वीकार किया जाता है तो जैसे सांख्य मत में पुरुष की उत्पत्ति नहीं मानी गई, उनके 20 के 20 तत्व है तो सब है ही है कहेंगे, वैसे ही पुरुष के समान सर्वथा सत होने से प्रकृति से, यानी प्रकृति भी सत वगैरह है, महान व अहंकार आदि की भी अनुत्पत्ति का अनिवार्य प्रसंग आता है, क्योंकि अनुत्पत्ति यानी वो महान भी है ही है, अहंकार वो बुद्धि भी अहंकार भी वो तो अनादि से है ही ऐसा मानना पड़ेगा, जो उन्हें अभीष्ट नहीं है। क्या कहा, वो क्या मानते हैं, प्रकृति वो करने वाली है, उसी से महान उत्पन्न होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, वो आगे की बातें उससे उत्पन्न होती है, और एक बाजू का कहते कि सर्वथा सत है तो उन्हीं का मत घटित नहीं हो रहा, ये कह रहे, क्योंकि उनको उनके यहाँ प्रकृति को सबका करने वाली मानी, और एक बाजू कहते कार्य अनादि का है तो उसने किया क्या जो अनादि का है, तो ये कथन है। इस प्रसंग को टालने के लिए, यानी उन्हीं का जो कहना है घटित नहीं होता है उनकी मान्यता के अनुसार, और उसको अगर टालना चाहते हैं, यदि कहा जाए कि यथार्थ में न कोई कार्य उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, किंतु जिस प्रकार कछुआ अपने विद्यमान अंगों को कभी बाहर निकालता है और कभी भीतर छुपा लेता है, आविर्भाव और तिरोभाव वो तो उसके वो तो वो जिसको कहें ना, मुंह भी है और हाथ पैर भी है, कभी बाहर निकालता है कभी अंदर ले लेता है, इसी प्रकार पूर्व में विद्यमान महान व अहंकार आदि का प्रधान से आविर्भाव मात्र होता है, यानी वो प्रकृति जो है वही सबसे बड़ी है, वही करने वाली है, उसका आविर्भाव तिरोभाव होता है, वो है तो अनादि से पहले सत रूप पे पड़े हैं, क्योंकि अपने ही कोई कंफ्यूजन है मर्ग की मान्यता में, तो उसको सिद्ध करने के लिए और कुछ बातें बताते हैं। इस प्रकार के आविर्भाव और तिरोभाव रूप परिणाम को छोड़कर कार्य कारण भाव वास्तव में है ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। सो इस कथन को असंगत बतलाते हुए उत्तर में यह कहा गया है कि पूर्व स्वभाव यानी तिरोभूत अवस्था के नाश और उत्तर स्वभाव आविर्भूत अवस्था के उत्पन्न होने का नाम ही तो परिणाम है, उसी को तो पर्याय कहते हैं। पहले नहीं था और अभी उत्पन्न हुआ, फिर भला ऐसे परिणाम की कल्पना करने पर नित्यत्व रूप एकांत पक्ष में कैसे बाधा न उपस्थित होगी? अवश्य होगी। अगर आप अन्य तिरोभूत था और आविर्भूत हुआ ऐसा मानते हैं तो ये तो परिणाम हुआ, और आप कहते नित्य एकांत है तो ये भी घटित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सर्वथा नित्यत्व की प्रतिज्ञा में यानी सर्वथा वस्तु को नित्य मानने वाले लोग हैं उसमें मन वचन व काय की शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य क्रिया तथा अरे चार नंबर का ऊपर पढ़ना, ऊपर पढ़ेंगे पुण्य पाप क्रिया न स्यात् प्रीत्य भाव फलम कुतः बन्ध मोक्षोच तेषां न येषां त्वं नाशिनायक। अब उसके जो निराकरण के लिए और भी बताते आगे। इसके अतिरिक्त सर्वथा नित्यत्व की प्रतिज्ञा में यानी सर्वथा वस्तु को नित्य मानने वालों के लिए मन वचन व काय की शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य क्रिया तथा उनकी अशुभ प्रवृत्ति रूप पाप क्रिया भी बन नहीं बन सकती, क्योंकि वो क्रिया को ही नहीं मानते हैं। पुण्य और पाप के ऐसे परिणाम जुदे जुदे होंगे नहीं उनके, क्योंकि वो सर्वथा नित्य को ही मान रहे हैं। अतएव पुण्य व पाप का अभाव होने पर जन्मांतर प्राप्ति रूप प्रेत्य भाव तथा सुख दुख के अनुभवन रूप पुण्य एवं पाप का फल भी कहाँ से होगा? क्या कहते हैं? ये पुण्य और पाप का अभाव मानते हैं, तो पुण्य पाप नहीं रहेंगे तो फिर एक जन्म से यानी ये भव से दूसरा भव मिलेगा? हम कहते हैं वो तो पाप पुण्य के फल के अनुसार जैसे कर्म प्रकृति बांधी वैसे उसको अन्यत्र जन्म हो जाता है, वो बात भी नहीं बन सकेगी एक बात। और पुण्य पाप का फल भी नहीं होगा, क्योंकि पुण्य पाप को ही नहीं मान रहे तो उसके फल की बात कहाँ से आई? ये कह रहे अतएव पुण्य व पाप का अभाव होने पर जन्मांतर प्राप्ति रूप प्रेत्य भाव, उसको प्रेत्य भाव का यानी अन्य धर्म अन्य जन्म धारण करना, यहाँ लिखा ना जन्मांतर प्राप्ति रूप प्रेत्य भाव। और दूसरा क्या? सुख दुख के अनुभवन रूप पुण्य एवं पाप का फल भी कहाँ से होगा? पुण्य के फल में वो सुख की अनुभूति होगी, पाप के फल में दुख रूप चलेगा, तो कहते ये भी नहीं हो सकेगा। इसलिए है भगवान, जिन एकांतवादियों के आप नेता नहीं है उनके मत में बंध व मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं बन सकती। ये तो जिनेन्द्र भगवान का यहाँ वर्णन करते हैं कि आप कैसे हो, तो एकांतवादियों के नेता नहीं है, यानी आप तो अनेकांतवादी हो, तो एकांतवादी कैसे है? तो उनके मत में जो ऐसा उन्होंने नित्य एकांत पद बताया है, यहाँ पुण्य और पाप भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा, तो मोक्ष भी कैसे होगा? इसलिए अरे है ना, ये सांख्य मत है, कितने मत है, बहुत सारे अन्य अन्य मत ही है सारे मानने वालों, नहीं तो एकांत मत वाले होंगे कैसे? बहुत सारे, एक दो थोड़े ही है। अब क्या वर्तमान में ये हम देखो आजू बाजू देखो कितने कितने क्या क्या मतों की वो तो चल रही है, और उसको फॉलोअर भी मिलते हैं। एंजॉय करो, हाँ, क्योंकि न जाने फिर अनंत काल तक नहीं मिलने वाला है, करो एंजॉय, एंजॉय करो ने आगे की तैयारी करो दूसरा एंजॉय का क्या अर्थ है? एंजॉय ने क्या कर रहे हो जानी तो रहे हो जो कुछ हो रहा है और मानता है कि मैं भोग रहा हूँ और ये भोग में मुझे सुख है इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ, ये उसकी मान्यता है। एंजॉयमेंट का अर्थ क्या था, सुख की सुख को भोगो, अपन सुख अपने में है उसको भोगो ना, ये तो पर से सुख मिलता है मान्यता इटसेल्फ गलत है। और ये तो ज्ञान का ही कार्य कर रहा है और मानता है मैं भोग रहा हूँ और उसमें सुख मानता है उल्टा, और चूंकि वो भोगने की आकुलता अनंत आकुलता चल रही है उस वहां पर, है ना। घूमने जाना है तो कहाँ जाना, क्या देखना, के अंदर से कैसे जो इसको एंटिसिपेशन कहती हुई थी, अरे ये करना है वो करना है, है ना, उसमें भी इसमें से सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा ये चल रहा है। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन उठते हैं ना। हाँ अरे 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 पूछो ना, लोगों के लिए पूछो। हाँ
जिसका ज्ञान का इतना उगाड़े, जो महावीर भगवान थे गणधर बने थे वो अन्य मति थे एक समय
आपका
में
ये प्रश्न है, गणधर थे तो अन्य मत से आए थे, गणधर थे वो अन्य मति नहीं थे,
के पहले वो गणधर बने उसके
जो गणधर बने वो अन्य मति में से आए थे बरोबर। हाँ
एक समय में उनका परिणाम पलट गया
अंतर्मूर्त में, अच्छा एक समय में कहो ठीक है, जो अंतिम समय हम कहेंगे उसको।
हाँ। एक समय में पलटा है तो उसका भी ज्ञान का उघाड़ तो इतना था ही।
देखो ज्ञान का उघाड़ होना बात अलग है, अब ये ज्ञान का उघाड़ जो भी वर्तमान में कोई साइंटिस्ट है कोई पैथोलॉजिस्ट है कोई डॉक्टर है कोई कुछ है, ज्ञान का उघाड़ नहीं है, पर सारे छह द्रव्यों संबंधी उनका ज्ञान गलत है। वो ज्ञान में सब कारण विपरीतता स्वरूप विपरीतता भेदाभेद विपरीतता सब चल रही है, उसको ज्ञान का उघाड़ केवल क्षोभसम को ज्ञान नहीं कहते हैं।
तो वो ज्ञान का उघाड़ नहीं गिना जाएगा ना,
अरे वो तो केवल वो तो ज्ञान का
उसका
मिथ्या ज्ञान है, वो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, यानी वो कितना भी उसके तो जिसको कहेंगे कि सुखी होने के लिए कहो या भव का अभाव करने के लिए उस ज्ञान की कुछ भी महत्ता नहीं है। बिना पढ़ा लिखा वो कहते हैं ना 8 वर्ष की बालिका भी समय दर्शन प्राप्त कर सकती है, तो उसमें कितना ज्ञान का उघाड़ होगा, बहुत ज्ञान का उघाड़ है तो जल्दी होगा ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। हाँ वो ज्ञान का उघाड़ है, इतनी बुद्धि है, वो तत्व का निर्णय करने में लगाओ तो फायदा ही फायदा है, परंतु उसके लिए इतनी सबकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा सियाने हैं ना इसलिए कैसा विचार कर उल्टा विचार करते हैं और उल्टा वो प्रूव करना चाहते हैं ये झूठ कैसे हो इसमें बुद्धि लग रही है। सरलता से अगर उसको स्वीकार करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दलीलें कर सकते, पर उनको ये कहने ये बात भगवान ने बताई है ऐसा ही होनी चाहिए, बस इतना सरल विश्वास करते हैं उनको समय दर्शन हो सकता है। और जो हमारे जैसे क्या उसमें हम ज्यादा बुद्धिमान है ना, करते तो नहीं अपने को मान के रखते कि हम ज्यादा जानते हैं, इनको क्या समझता है ना।
देखा जाए तो ये जो रॉकेट छोड़ते हैं रॉकेट,
हाँ
तो वो ज्ञान अपने तुमको नहीं है, तो उनका ज्ञान का उगड़ जाती है ना, उनको उगड़ आत्मा के प्राप्ति के लिए कुछ फायदेमंद नहीं।
और 11 अंग और 9 पूर्व का धार भी मिथ्या दृष्टि हो सकता,
रह सकता है,
रह हाँ, सकता है। हाँ। तो उसने वो जो पढ़ा है उसका सही अर्थ उसको बाधित नहीं हुआ है,
सही अर्थ ने वो सो जानकारी ली है।
हाँ।
जानकारी बात अलग है और वो आत्म सन्मुखता बात अलग है, आत्मा को नहीं जाना उसने, आत्मा का अनुभव नहीं लिया, ख्याल में आई ना। और ये भी जानकारी कैसी ग्रंथों में से उसने नक्की किया है। हाँ। पूरा ही पूरा उसको ज्ञान को, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते हम, यही रुकते वो 4 नंबर का अभी हमने पढ़ा ना वहीं तक। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।